आज चूंकि एकादशी व्रत है तो हर एकादशी व्रत में श्रील प्रभुपाद लीला मत्स्य पाठ किया जाता है, तो आज भी हम श्रील प्रभुपाद की लीला मत्स्य पाठ करेंगे। तो हम जानते हैं रोजाना हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण के द्वारा भगवान की कथा लीला का स्मरण करते हैं, और साथ साथ में भगवान के भक्त की भी लीला कथा श्रवण करते हैं। भगवान की लीला कथा श्रवण करने से क्या होता है? हम लोग रोज पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? नष्ट प्रायसु अवध्येषु नित्यम भागवत सेवा। तो हमारा जितना अभद्र है जो कर्मश है शरीर के अंदर में, ये प्रायसु पूरा खत्म नहीं होता, धीरे धीरे, यानी एक बार सुन गया सब खत्म हो गया, धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। और फिर नष्ट होने के बाद क्या होता है? तो निष्ठा भक्ति उत्पन्न होता है, भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाता है, और तब हम भगवान के दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। अभी तो हमारा आंखें भगवान के स्वरूप को देख नहीं पाता, भगवान कैसा है, उनकी स्वरूप क्या है, कितना सुंदर है, यह हम देख नहीं पाते, क्योंकि ऐसा चक्षु हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा चक्षु देने वाला कौन है, कैसे प्राप्त करेंगे? रोज पाठ करते ना गुरु पूजा में, चक्षुदान दिला दे जन्म जन्म प्रभु से। तो गुरु साधु यही हमको वो चक्षु प्रदान कर सकते हैं, और इसी के द्वारा ही हम वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण से हम उन महापुरुषों की, उन संतों की गुण गाथा श्रवण करते हैं। भगवान को प्राप्त आप अपने आप नहीं कर सकते, नहीं भगवान के विषय में अपने आप जान सकते हो, उसको जानने के लिए संत की कृपा जरूरी है, उनके शरण में जाना पड़ता है, तभी हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, उनके लीला को समझ सकते हैं, और अपने जीवन को उसी तरह सफल बना सकते हैं उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए एक ऐसी युग पुरुष के हिसाब से आए हैं। जब हम क्या कर रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उस समय अमेरिका की स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय स्थिति, हिप्पियों से भरा हुआ, वो भौतिक भोगों में लोग इतना उन्माद हो चुके थे कि उनको पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए, कुछ पता नहीं था। वैसे समय में प्रभुपाद जी वहां गए और उन्हीं लोगों के बीच में रह करके उनके जीवन शैली को परिवर्तित किया। यह है महत्वपूर्ण संतों की। तो श्रील प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो हमारा स्थिति ऐसा नहीं बनता ना, हम आज यहां नहीं होते। ना हम जान सकते थे। दिल्ली में बहुत सारे लोग वृंदावन को जानते ही नहीं थे एक समय, जबकि बहुत नजदीक में है। उनकी कृपा से देश देशांतर से जब लोग आने लगे तो लोकल लोग जो यहां का स्थानीय लोग है भारत के, उनको भी समझ में आया वृंदावन कोई विशेष जगह है। नहीं तो वृंदावन में बूढ़े लोग जाते थे उस समय, कुछ समय तक हम जब बचपन में थे तो हम सुनते थे कि बूढ़े लोग वृंदावन काशी गया जाते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, बाकी कोई नहीं जाता था। मगर शिला प्रभुपाद जी ने ये ज्ञान प्रदान किया कि ये बूढ़े के लिए नहीं, सिर्फ हर जीव के लिए है जो इस संसार में आए हैं, भटके हुए हैं, जिनको अपने पहचान मालूम नहीं है वो कौन है, कहां से आए हैं। उन्होंने प्रश्न के उत्तर प्राप्त किया शिला प्रभुपाद के लिए द्वारा, जिनको कभी वो जान ही नहीं सके थे। वो कैसे जीते थे? पशु वध। आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, मगर कुछ भाग्यशाली जीव है जो प्रभुपाद की कृपा से अपने जीवन के शैली को कुछ कुछ समझ सके। अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो हम कहते हैं हम भक्त हैं, मगर हम भक्त नहीं हैं, भक्त नहीं बने। अभी हमारा प्रयास मनुष्य बनने का। प्रभुपाद जी ने पहला स्कूल खोले हैं, पहले मनुष्य बनो उसके बाद भक्त बन सकते। तो मनुष्य जब बन जाएंगे उसके बाद भक्त बन पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो मनुष्य बनने के लिए क्या क्या प्रभुपाद ने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने मनुष्य बनाने के लिए उन पशुवत जीव को राह दिखाई, उनकी गुणगाथा इस विषय में लिखा है। तो अमेरिका में जब प्रचार कर रहे थे तो उस समय भक्तों के द्वारा रचित शिला प्रभुपाद की लीला मृत लीला, उन्होंने किस प्रकार से भगवान के प्रचार की, वो उस विषय में आज पाठ कर लिए। शिला प्रभुपाद कई प्रोफेसर से मिलने को राजी हो गए। तो जब थोड़ा इस्कॉन की स्थापना हो गई और प्रचार कर चलने लगे, तो भक्त प्रभुपाद के शिष्य लोग अलग अलग लोगों से प्रभुपाद की मीटिंग कराते थे स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, पत्रकारों से, नेताओं से, विभिन्न प्रकार लोगों से। तो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में बीए और टेम्पल विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद रविंद्र सरल अब टेम्पल विश्वविद्यालय से पीएचडी के लिए शोध कर रहा था। तो पढ़ाई लिखाई को माया के अंग मानकर उसे एक बार छोड़कर कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह रंग गया था, किंतु प्रभुपाद ने उसे आगे की डिग्री के लिए शोध करने के लिए वापस जाने को प्रोत्साहित किया था। प्रभुपाद की दूरदर्शिता कैसा है, भगवान कहते सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आऊं। प्रभुपाद जी दोबारा वहां भेज दिया, नहीं कुछ डिग्रियां और प्राप्त करो। क्यों? जब श्रील प्रभुपाद फिलाडेल्फिया में थे तो ये आगमनात्मक तक की प्रक्रिया के विरुद्ध बोले थे। एक दिन सवेरे के भ्रमण में रविंद्र सब ने कहा था, प्रभुपाद आपने आगमनात्मक प्रणाली की अभी भी आलोचना की है, वैसे ही आलोचना जॉन स्टुअर्ट मिल और बर्ट्रन रसल ने भी की थी, किंतु बाद में वे संशयवादी बन गए थे, इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान जैसी कोई चीज है ही नहीं। शिला प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, एक दूसरे मूर्खता की बात है, यह भी एक अनुमान है क्योंकि मैं विफल रहा इसलिए ज्ञान है नहीं। डॉक्टर योगेश पटेल जो भारत में जन्म लेकर पश्चिम में शिक्षित हुए थे और बौद्ध धर्म और मायावादी हिंदू दर्शन के अध्येता थे, टेम्पल विश्वविद्यालय के धर्म विभाग में पढ़ाते थे। एक दिन अपने दो स्नातक छात्र के साथ डॉक्टर पटेल तीसरे पहर उस समय आठ अप के जब श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में अपने कई शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, रविंद्र सेठ ने उनका परिचय कराया। प्रभुपाद, तो आप हिंदू धर्म पढ़ाते हैं? डॉक्टर पटेल, जी हां। प्रभुपाद जी, हिंदू धर्म क्या है? डॉक्टर पटेल ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, आप बताएं कि हिंदू धर्म क्या है। प्रभुपाद ने कहे, आप नहीं जानते, आप हिंदू धर्म में पढ़ाते हैं और आप नहीं जानते कि ये क्या है। ये हमारे डॉक्टर स्वरूप दमदार है, ये भी पीएचडी हैं, आइए इस विषय में उनका मत जान। स्वरूप दमदार की ओर मुड़ते हुए प्रभुपाद जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये पढ़ाता है लेकिन जानते नहीं। स्वरूप दमदार जी बोले, धोखेबाज, धोखेबाज श्रील प्रभुपाद, इसी को धोखेबाज कहते हैं, ऐसे ही करते हैं लोग आजकल। जिस विषय में ज्ञान नहीं है उसको चर्चा करते, उसमें ज्ञान देते हैं, है ना। कई लोग कहते धर्म निरपक्ष, धर्म कोई पक्ष, धर्म है नहीं, बिना धर्म में संसार में कोई भी वस्तु नहीं चल रहे हैं। हर वस्तु में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें धर्म है कि नहीं, और हम कह देते हैं धर्म निरपक्ष, धर्म ही नहीं है। निरपक्ष कहें, अगर पानी अपने धर्म छोड़ दे तो आपको प्यास बुझेगी, हवा अपने धर्म छोड़ दे आप जीवित रह पाओगे? तो धर्म हमेशा हर वस्तु में, मगर मनुष्य के धर्म क्या है? वो मनुष्य जब तक नहीं जान ले तब तक मनुष्य तो नहीं है, तब तक पशुवत जीना पड़ेगा। डॉक्टर पटेल क्रोध में आ गए और श्री प्रभुपाद से जोर जोर से बोलने लगे, प्रोफेसर, और श्री प्रभुपाद में तत्काल वाक युद्ध छिड़ गया। डॉक्टर पटेल ने कहा, आप मुझे पढ़ा रहे हैं, यदि मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता कि धर्म क्या है तो आप पढ़ाइए। प्रभुपाद जी बोले, एक आध्यात्मिक गुरु आपका सेवक नहीं है। प्रभुपाद जी कितना दृढ़ निश्चय से उत्तर देते थे, कभी डरते नहीं थे। यह है संत की महत्वगुण, कंप्रोमाइज नहीं करता, डरते भी नहीं। भगवान के विषय में और सच बोलने में कभी पीछे नहीं हटते थे। आप पहले मेरे छात्र की तरह सिर मुड़ा डालिए, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करना और उसके प्रति समर्पित होना है, तब यह सत्य का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही कहा है भगवद गीता में, तद विधि प्रणिपातन परमि प्रश्न में सेवया। जब भक्त गुरु के पास जाकर कर उनके सामने विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं तभी उनको कृपा प्राप्त होता है। भगवत गीता में शुरू में भी यही संदेश देते हैं कि अर्जुन युद्ध में निराशा होकर विषादग्रस्त होकर के युद्ध छोड़ करके भागने के प्रयास कर रहे थे। भगवान कृष्ण को बोले, मैं ये सब युद्ध कैसे क्यों करूं, इसमें फायदा क्या है? नुकसान ही नुकसान है, सारे रिश्तेदार है, इनको मार के हमको क्या मिलेगा। बहुत बड़ा बड़े ज्ञान दिया, पूरे अध्याय ज्ञान में भरा है। भगवद गीता के पहला अध्याय पूरा ज्ञान में भरा हुआ, मगर भगवान को जवाब नहीं दिया, एक भी सुनते गए। अर्जुन घबरा गए, कुछ बोलने लगे, क्या बात है। तो उन्होंने लास्ट में बोला, मैं आपके शरण में आया हूं, आपके शिष्य हूं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। तब भगवान बोलना शुरू किया कि विधि है, जब किसी के सामने, किसी संत के सामने, किसी भगवान के भक्त के सामने उनके विषय में क्या तप करना चाहेंगे तो शरणागत की आवश्यकता है। उनके चरण के नीचे बैठ करके प्रार्थना करना पड़ता है, तभी कृपा मिलता है। मगर कोई कहे सामने जाके खड़े होकर मुझे पता नहीं है बताओ, तो आप आदेश दे रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो। तो उस कोई व्यक्ति जो ज्ञान से भरे हुए हैं, भक्ति से भरे हुए हैं, भगवान के भक्त हैं, वो उस आदेश को मानेंगे नहीं, क्योंकि जान जाते हैं कि दंड से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत पंडित था, मगर दंभ इतना था वो अपने ज्ञान को समझ नहीं पा रहे थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे। उनको हमेशा चुनौती देते थे। वैसे ही इस संसार में भी लोग होते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वो हर जगह में हर के सामने चुनौतीपूर्ण बातें करते हैं, मगर जब तक विनम्रता नहीं होगी आएगी तब तक आप किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो प्रभुपाद ने संदेशा दे रहे हैं, पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो, क्या करो, आप सर क्यों मुड़ाए, सर क्यों मुड़ाए। प्रभुपाद जी ने हमें सर मुड़ा दिए हैं, मैं प्रभुपाद जी ने प्रयत्न चैतन्य महाप्रभु की समय परंपराचार है। तो सर मुड़ाने की विधि क्यों है, किस कारण से सर मुड़ाते हैं। हमारा अंदर में जो अहंकार हो, सर ऊंचा करके रहने, उस सर को पहले नीचा करने के लिए सर मुड़ा देते हैं। हेयर स्टाइल रहेगा तो कई लोग हेयर स्टाइल के द्वारा अपने प्रभाव को विस्तार करते हैं विभिन्न प्रकार के। तो पहले ही आपके सर नीचा होना चाहिए, डॉक्टर पटेल ने कहा। जब वे पहली बार कमरे में आए थे तो उन्होंने प्रभुपाद को प्रणाम किया था। प्रभुपाद जी बोले, तो आपको मेरी पहली शिक्षा यह है कि यह धोखाधड़ी बंद कीजिए। अर्चिला प्रभुपाद और डॉक्टर पटेल जोर जोर से बोलने लगे थे। अधिकांश भक्त सन्न होकर मौन थे। उनमें से कुछ जैसे ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि किसी तरह भेंट वार्ता समाप्त कर दी जाए। प्रभुपाद जी ने बोला, आप मुझसे पूछते हैं कि धर्म क्या है, मेरा उत्तर है सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण कहते कि धर्म का अर्थ है शरणम ब्रज पूर्णतः समर्पण। डॉक्टर पटेल ने कहा, समर्पण से आपका तात्पर्य क्या है। प्रभुपाद जी बोले, आपको समर्पण का अर्थ नहीं ज्ञात है, आपको समर्पण का अर्थ नहीं ज्ञात है। कोश लाओ, कोश मतलब क्या है, डिक्शनरी, डिक्शनरी को कोश कहते हैं, कोश लाओ, आइए देखते हैं। डॉक्टर पटेल चिल्लाकर, नहीं, मैं समर्पण का संस्कृत में व्युत्पत्ति वाचक अर्थ जानना चाहता हूं। प्रभुपाद बोले, आप आध्यात्मिक गुरु नहीं चाहते, आप आपको संस्कृत का एक शिक्षक चाहिए, हम अपना समय और अधिक नहीं गवाएंगे। ब्रह्मानंद स्वामी ने इसे अपने लिए एक संकेत मान लिया। उन्हें डॉक्टर पटेल से प्रस्थान करने को कहा। इसके पहले कि आप आक्रामक बन जाए, तब ब्रह्मानंद स्वामी और डॉक्टर पटेल उठे और एक साथ कमरे से बाहर चले गए। शिला प्रभुपाद क्रोध से कांपते रहे और अपने वरिष्ठ भक्त रविन्द्र शरण को दांत भर निगाह से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने लाया था। तो प्रभुपाद जी उनके प्रति क्रोधित हो गए। वो प्रभुपाद से मिलने के लिए इस तरह का आदमी कैसे लाया? रविन्द्र शरण भयभीत और त्रस्त था। इसके पहले किसी ने प्रभुपाद को इतने क्रोध में भरकते कभी देखा नहीं था। रात भर जाकर रविन्द्र शरण अगले दिन सवेरे प्रभुपाद के सामने एक तैयार की हुई क्षमा जांचने के साथ गया। उसने कहा, शिला प्रभुपाद, मुझे सचमुच खेद है कि कल रात में उस प्रोफेसर को आपसे मिलने ले आया। मैं नहीं जानता था कि वो इतना धूर्त है। श्री प्रभुपाद ने आश्चर्य से दृष्टि पर कि उन्होंने कहा, सब ठीक है? और तब ये संतोष की मुद्रा बोले, कम से कम उसे डांट तो मिल गई। हिंदू धर्म के एक अन्य अध्यापक डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस प्रभुपाद से मिलने आए, किंतु बिल्कुल भिन्न मनोभाव के साथ। आरंभ में ही उनके बीच निकट सौहार्द स्थापित किया गया। डॉक्टर हॉपकिंस ने श्रीमद भागवत और गीता के अपने संबंध के विषय में पूछा और श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भागवतम गीता के एक स्नातक अध्ययन की तरह है। वो वहां से आरंभ होता है जहां गीता समाप्त होती है। डॉक्टर हॉपकिंस, यदि कोई आपके साहित्य का छोटा सा संकलन करना चाहे, उदाहरण के लिए एक दो श्लोकों में, तो आप उसके संकलन में क्या रखना चाहेंगे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वो दो श्लोक व्यक्त किए हैं, धर्म से ही अपवर्गस्य, धर्म से ही अपवर्गस्य। और उन्होंने उनका अनुवाद पढ़ाया, सभी धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उनका प्रयास सांसारिक लाभ के लिए कभी नहीं करना चाहिए। और जो चरम सेवा में लीन है, उसे सांसारिक लाभ का प्रयोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। दोनों बातें हैं। जो व्यक्ति संसार में मगन है, उनसे संदेश है क्या? धर्म को क्या करो? संसार की वस्तुओं के लिए इस्तेमाल नहीं करो। धर्म को स्थान धारण क्यों करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसमें जो लिखा है, धर्म से ही अपवर्गस्य, ये जितने संसार की जो वस्तु है अपवर्ग है, इनसे मुक्त होना है। हम भगवान के शरण में आते हैं, विभिन्न प्रकार की हमारा डिमांड लेकर के, समस्या में भरा जीवन, इसे छुटकारा पाने के लिए बहुत लंबे लिस्ट बना के लाते हैं, यहां सुनाते हैं, इतना नुकसान हो गया, इतना क्षति पहुंच गई। जैसे आजकल आप सुन रहे हो, नेपाल में भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग मारे गए, नुकसान हो गए। तो भगवान की शरण में गए, भगवान बहुत तकलीफ में है, आप कृपा कीजिए कुछ। तो जीवन तो आपके समाप्त कभी होएगा ही, ये जीवन पूरा अमृत प्राप्त नहीं किया है, एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। मगर हम भगवान के भक्ति, भगवान के ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इनके प्रयास में रहना चाहिए। ये जीवन प्राप्त इसलिए हुआ है कि इन शरीर के द्वारा आपने जीवन को शुद्ध बनाया। अपने कर्म को शुद्ध बनाएं और भगवान की अहोइत की भक्ति के द्वारा इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाए, तभी हमारा जीवन सफल होएगा, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकती है। नहीं तो इस संसार में पशु की तरह ही जीना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो सांसारिक लाभ के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए, और भी जो चरण सेवा में लीन है उसे सांसारिक लाभ का प्रयोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। मगर जो भक्त बन गए हैं जैसे हम लोग की तरह सुख, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके भी संदेश अभी आए। इंद्रियों तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, सांसारिक विषय की लाभ के लिए, इसको त्यागना पड़ेगा। प्रभुपाद ने तात्पर्य पढ़वाया और इसका आगे विस्तार किया। उन्होंने बताया कि किस तरह लोग केवल भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, तो क्या आप समझते हैं कि यह आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण संदेश है जो आप देना चाहते हैं? श्रील प्रभुपाद ने कहा, यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आप यह भौतिक शरीर नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये कमीज है, तो यदि आप अपने शरीर की परवाह के बिना इसी कमीज को सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहें, तो क्या अच्छी बुद्धिमानी की बात होगी? उसी तरह हम आत्मा हैं, शरीर तो वस्त्र के समान है। सारे भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति केवल शरीर की रक्षा में लगा है। कोई नहीं जानता कि आत्मा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। ये तो भागवत ने बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने शरीर में और आत्मा के विषय में। हम तो रोज जानते पढ़ते हैं हम शरीर नहीं है आत्मा है, पढ़ते तो हैं मगर समझ नहीं सका अभी तक, क्योंकि जितने ही हमारा परेशानी आते हैं शरीर से ही, कुछ भी हो जाए उस शरीर को रक्षा रक्षण में लग जाते हैं। गर्मी लगे ठंडी के प्रयास में लग रहते हैं, भूख लगे खाने के प्रयास में लगे। आत्मा के ऐसा जरूरत है क्या? अगर हम समझ गए हम आत्मा है तो आपको ना भूख में परेशान होना है, ना गर्मी में परेशान होना, ना ठंडी में, मगर हम परेशान रहते हैं क्योंकि हम उस लेवल में उस स्तर में पहुंचे नहीं है। तो इस विषय बहुत लंबी चौड़ी है आत्मा शरीर के विषय में, मगर प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि शरीर के स्वरूप कैसा होता है, एक कमीज की तरह। आत्मा शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है, भगवान की कभी विनाश नहीं होता, उसी तरह आत्मा कभी विनाश नहीं होता। आत्मा क्या करते हैं, कपड़े बदलते रहते सिर्फ। तो यदि आप अपने शरीर की परवाह के बिना इसी कमीज को सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहें, तो क्या अच्छी बुद्धिमानी की बात होगी? इसी तरह हम आत्मा हैं, शरीर तो वस्त्र के समान है। सारे भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति केवल शरीर की रक्षा में लगा है। कोई नहीं जानता कि आत्मा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। डॉक्टर हॉपकिंस वैष्णव धर्म की ऐसी उदार व्याख्या सुनकर प्रसन्न लगते थे। जब डॉक्टर हॉपकिंस ने शिव के संबंध में पूछा तो प्रभुपाद ने बताया, यद्यपि शिव जी को भगवान विष्णु के समान नहीं समझना चाहिए, किंतु वे सबसे बड़े सबसे अच्छे वैष्णव विष्णु के प्रमुख भक्त हैं और उनकी उपासना इसी रूप में होनी चाहिए। और भगवान राम, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि राम भगवान कृष्ण के एक अवतार थे। प्रोफेसर हॉपकिंस को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। प्रभुपाद ने यह भी बताया कि मध्य रामानुज और विष्णु स्वामी ये सभी महान आचार्य थे। डॉक्टर हॉपकिंस ने तब महाराष्ट्र के संत तुकाराम के विषय में पूछा। प्रभुपाद ने कहा तुकाराम विष्णु को परमात्मा मानते थे, वो चैतन्य महाप्रभु की पद्धति संकीर्तन को स्वीकार करते थे और वे चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु समझते थे, इसलिए तुकाराम और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर हॉपकिंस तो भगवान विट्ठल और कृष्ण एक ही है। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान विट्ठल विष्णु है। डॉक्टर हॉपकिंस और तमिलनाडु के अलवार आदिवासी आप उनकी शिक्षाएं भी स्वीकार करते हैं तो असली प्रश्न वैष्णव और अन्य के बीच का है। प्रभुपाद ने कहा हां प्रश्न यही है वैष्णव और अवैष्णव, वास्तविक अंतर वैशेषिक और निर्वैशेषिक का है। डॉक्टर हॉपकिंस आप शिव के उपासकों को निर्वैशेषिक मानते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला हां निर्वैशेषिक। शंकराचार्य ने कहा है कि परम सत्य अंततः निर्वैशेषिक है और उपासकों के लाभ के लिए साकार की कल्पना की जा सकती है। जब डॉक्टर हॉपकिंस ने उल्लेख किया कि शिव के कुछ उपासक वैशेषिकतावादी लगते हैं तो प्रभुपाद ने शंकर के अनुसार सेवम की असली मानसिकता का आख्यान किया। प्रभुपाद ने कहा इस समय में भक्त हूं कि जो ही मैं पूर्णता प्राप्त कर लेता हूं मैं परमात्मा के समान साथ एक हो जाता हूं, यही उनका सिद्धांत है। शिवजी के पास लोग क्या कहते हैं कहते क्या है सेवा करते हैं? नहीं नहीं मैं शिव जी को लोगों को क्या कहते हैं नहीं बोला, शिव जी के लोग क्या कहते हैं? अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि ये नहीं बोलते ना। प्रभुपाद ने वही तो समझाया शिवो हम एक ही बात है ब्रह्म। जो लोग निर्विकार जो भगवान के साकार को नहीं मानते हैं निर्विकार की उपासना करते हैं ब्रह्मलीन होना चाहते हैं तो उनके सिद्धांत प्रभुपाद ने यही बता रहे हैं कि अभी क्या है शिव जी के भक्त हैं। शिव जी के भक्त लोग कहते थे अभी भक्त हैं मगर जो ही तपस्या में पूर्णता प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो शिव जी में लीन हो जाए तो ब्रह्म ने बताता ना यही उनका सिद्धांत है। प्रभुपाद जी ने कहा प्रारंभिक अवस्था में जब मैं पूर्ण नहीं हूं तब मैं किसी काल्पनिक ईश्वर की उपासना करता हूं किंतु जब मैं पूर्ण बन जाता हूं तब उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती, मैं तो वही हूं तो मेरे को पूछने की जरूरत क्या है, दूसरे को क्यों पूछे, मैं एक हो जाता हूं। एक अध्यक्ता होने के नाते डॉक्टर हॉपकिंस को भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक दर्शन के विषय में सुनकर प्रसन्नता हुई। जब प्रभुपाद ने स्मार्ट ब्राह्मणों को भी निर्वैशेषिकतावादी बताया तो डॉक्टर हॉपकिंस को आश्चर्य हुआ। चलो प्रभुपाद ने कहा उनकी पहचान करना बहुत कठिन है, अधिकांश तथाकथित वैष्णव निर्वैशेषिकतावादी हैं। डॉक्टर हॉपकिंस तो कोई वास्तविक भक्त है या नहीं इसकी परख इस बात से नहीं होती कि वो इस समय भक्त हैं पर इस बात से होती है कि शाश्वत भक्ति को ही वो अपना लक्ष्य मानता है। प्रभुपाद जी बोले हां वह नित्य युक्त है जिसका तात्पर्य है शाश्वत रूप में। डॉक्टर हॉपकिंस ने इस कसौटी पर रखते हुए श्री अरविंद के बारे में पूछा, जो निर्भय शिष्य की प्रभावी से ऊपर लगते हैं। प्रभुपाद सम्मत हुए। प्रभुपाद ने व्याख्या की, वो कहते हैं कि मायावादी दर्शन के परे भी कुछ हैं, वो भक्ति हैं, किंतु अरविंद समझ नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें सिद्ध पुरुष से शिक्षा नहीं ली थी, वह स्वयं सिद्ध प्राप्त करना चाहते थे। कौन अरविंद की बात कर रहे हैं? ऋषि अरविंद, जो स्वतंत्रता श्रेणी में नाम भी लिखा हुआ है जिनके, उनकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर हॉपकिंस ने कहा, तो उनकी समस्या यह थी कि वो अपने ही प्रयास में ये करना चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा, हां, वे गुरु परंपरा से होकर नहीं चले, इसलिए इसमें बहुत समय लगता। डॉक्टर हॉपकिंस जाना चाहते थे और उन्हें प्रभुपाद को जो समय लिया उसके लिए और उनके ज्ञान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रभुपाद ने पूछा, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? पूरे मनन समाज को हमारे साथ हो जाना चाहिए। डॉक्टर हॉपकिंस ने उत्तर दिया कि वे लंबे समय से भक्तों के मित्र रहे हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अंत में वे सन्यासी हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा कि सन्यास का मतलब केवल वेशभूषा बदलना नहीं है, वरन हर वस्तु को कृष्णार्पण करना है। जुलाई 15, 1975 में श्रीला प्रभुपाद फिलाडेल्फिया से वायुयान द्वारा सीधे सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे आर उपेंद्र प्रथम श्रेणी में गए, जबकि ब्रह्मानंद स्वामी, हरिकेश और प्रद्युम्न किफायती श्रेणी में गए। विशाखा देवी दासी भी श्री प्रभुपाद का फोटो खींचने के लिए साथ आई थी। जब वायुयान उतरने के लिए उचित ऊंचाई पर मंडराने लगा तो औपचारिक वेशभूषा में एक व्यक्ति कैबिन में से निकला। उसकी नजर तुरंत श्रील प्रभुपाद पर पड़ी, जो खिड़की के पास बैठे थे। वे उनके पास पहुंच गया। जब उसने प्रभुपाद की ओर झुककर पूछा कि वो कैसे हैं, तो प्रभुपाद समझ गए कि वो उनसे बात करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उपेंद्र से हट उठकर अपनी सीट उसे देने को कहा। प्रभुपाद ने अनुमान लगाया, आप कप्तान हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं फ्लाइट सुपरवाइजर हूं और पायलट और क्रू कर्मी दल के कार्यों का निरीक्षण करने आया हूं। क्या यह ठीक रहेगा यदि मैं आपसे एक दार्शनिक प्रश्न करूं? प्रभुपाद ने प्रश्नतापूर्वक सिर हिलाया, क्या प्रत्येक वस्तु ईश्वर द्वारा सिंचित है? शिला प्रभुपाद ने कहा, हां, और वेदांत सूत्र उद्धृत किया, जन्मादस्य यतः। प्रभुपाद ने कहा, जिस भी वस्तु का अस्तित्व है उसके मूल उद्गम ईश्वर है। फ्लाइट सुपरवाइजर ने पूछा, तो आप क्या हैं? क्या पापी भी ईश्वर की सृष्टि हैं? प्रभुपाद ने समझाया, ईश्वर के लिए ना पाप है ना पुण्य है, हर वस्तु पुण्य है। ईश्वर का सामने का भाग पुण्य है और उनका पृष्ठ भाग पाप है। इस उदाहरण को ले तो शरीर में छाती और पेट बराबर है। ऐसा नहीं है कि जब पीठ में कुछ दर्द होता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते हैं और परवाह केवल तब करते हैं जब छाती में दर्द होता है। नहीं, यद्यपि यह पृष्ठ भाग है किंतु वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सामने का भाग है। तो क्या उसी प्रकार पाप और पुण्य दोनों समान महत्व के हैं? नहीं, ईश्वर के लिए कोई चीज बुरी या पापमय नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य के लिए कहीं अंधेरा नहीं है किंतु हमारे लिए प्रकाश भी है और अंधकार भी है। यदि आप अपने पीठ सूर्य की ओर रखें तो आपका अंधकार मिलेगा और यदि आप सूर्य के सामने रहें तो अंधकार नहीं रहेगा। तो इसमें क्या संदेशा दिया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि भगवान कृष्ण कैसा है, सूर्य के समान, और अंधकार किसको कहते हैं? कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार। तो अगर हम माया की तरह मुंह फेरे, मुंह करके खड़े हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, प्रकाश नहीं दिखेगा। मगर हम हमेशा भगवान की तरफ मुड़कर देखे, उनके सामने खड़े रहें तो अंधकार दिखेगा ही नहीं। तो अंधकार क्या है संसार में? अंधकार किसको कहते हैं? अंधकार किसको कहते हैं हम? अज्ञान। जिसको ज्ञान नहीं है वो अंधकार में है। तो संसार में अज्ञानी लोग है, वो क्यों अज्ञानी है? वो अपने आप को नहीं जानते, पहचान नहीं पाते कौन है। वो शरीर को ही अपना मान लिया है, वही सब कुछ, उसी के लिए सब कुछ करना, इसीलिए परेशान रहते हैं संसार में। मगर जो व्यक्ति भगवान को अपना लिया है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। जहां भगवान रहते हैं वहां अंधकार नहीं रहता, नहीं रहता, वहां अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या है? भगवान के तत्व को, महत्व को समझते हैं, अपने के बारे में ज्ञान है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो उसे कोई तकलीफ नहीं होता। हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करके अंधकार पैदा कर लेते हैं। यदि ईश्वर के सामने ना रहकर हम ईश्वर की ओर अपनी पीठ कर लेते हैं तो अंधकार हो जाता है, अन्यथा अंधकार कोई प्रश्न, अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। सूर्य में जैसा कि वो है, अंधकार को कोई स्थान नहीं है, इसलिए ईश्वर सर्वरूपेण पुण्य है। लेकिन जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तब पाप छा जाता है। अच्छा, हम सदैव ईश्वर चेतना युक्त रहते हैं तो सर्वतः पुण्य का राज रहता है कि ये ठीक है। ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति के समझ में बात आ गई थी और उसने उत्तर स्वीकार कर लिया। वह एक दूसरा प्रश्न पूछने की ही था, पूछने ही को था कि अच्छे कपड़े पहने, और कुछ कुछ नशे में धूत एक यात्री उनके पास पहुंचा और प्रभुपाद से बोलने लगा। श्रील प्रभुपाद ने उस आदमी की ओर देखा, पूछा क्या आप मृत्यु से डरते हैं? वो मदहोश व्यक्ति कुछ हकलाया, शांत हुआ और वहां से चला गया। प्रभुपाद ने कैसे प्रश्न प्रश्न, प्रभुपाद पहले पहचान गए थे वो कैसा है, तूने पहले ही ऐसा प्रश्न पूछ दिया जो वो पहले कर गए, प्रश्न से ही कर गया और भाग गया, कुछ पूछा नहीं। फ्लाइट सुपरवाइजर ने श्री प्रभुपाद से अपनी भेंट कोई विरल सुर से समझते हुए पुनः पूछा, क्या बता सकते हैं कि कोई शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? श्री प्रभुपाद गीता से उदाहरण देने लगे, भोक्तारान यज्ञ तपसाम, और विशाखा को संकेत करके उन्होंने गीता की एक प्रति मांगी। भक्तों ने आपस में परामर्श किया किंतु भगवत गीता की प्रति किसी के पास नहीं थी। जब प्रभुपाद ने सुना तो उन्हें क्रोध आ गया। यद्यपि अतिथि की उपस्थिति में उन्हें अपने इस भाव को दबाया, उन्हें इस व्यक्ति को बताया कि कोई व्यक्ति ईश्वर को परम नियंता परमानंद और सबका हित से माने तभी वह शांति पा सकता है। तो यह संदेशा है, जो लोग शांति पाने के लिए बहुत सारा उपाय ढूंढ रहे, शांति प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार मार्ग ढूंढने में लगे हैं, तो प्रभुपाद ने उनको संदेशा दिए हैं। क्या? कोई व्यक्ति ईश्वर को परम नियंता परमानंद और सबका हितैषी माने तभी वह शांति पा सकता है। प्रभुपाद ने कहा, मूर्खता बस हम दावा करते हैं कि भूमि हमारी जायदाद है इसलिए हमें शांति नहीं मिलती, किंतु वास्तव में ईश्वर सबके स्वामी है। श्री प्रभुपाद और फ्लाइट सुपरवाइज दोनों को वार्तालाप में बड़ा आनंद आया। और जब फ्लाइट सुपरवाइजर प्रभुपाद से क्षमा याचना करते हुए जाने लगा तो उन्होंने प्रभुपाद से प्रेम से हाथ मिलाया। प्रभुपाद ने प्रद्युम्न को बुलाया, उनके नेत्र में दिव्य क्रोध झलक रहा था। क्यों झलक रहा था? हाँ, उनको भगवत गीता दे नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उपेंद्र प्रद्युम्न को गीता की कोई भी प्रति साथ में रखने के लिए डांट लगाई। उन्हें चाहिए था कि प्रति सदैव अपने साथ रखे। प्रद्युम्न ने बताया कि जब भी उनके पास भगवत गीता यथारूप की प्रति नहीं थी, किंतु किसी तरह किसी अन्य लेखक के प्रति वह साथ लिया था। इससे प्रभुपाद का क्रोध और बढ़ गया। तब उन्होंने उपेंद्र का आदेश दिया कि भगवत गीता यथारूप चैतन्य चैतन्यमृत खंड एक और श्रीमद् भागवत इन तीन ग्रंथों को साथ ले बिना उस यात्रा पर कभी नहीं निकलना। श्रीला प्रभुपाद की।